नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके हमारे उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों दूसरे इतिहास की पुस्तक जो बाइबल की पुस्तक है से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि सुलेमान ने दाऊद की इच्छा के अनुसार मंदिर बनवाया, उसका समर्पण किया और प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप मेरे साथ दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 15 पद को निकाल लीजिए। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसका 15 पद, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप इस आदेश का पालन करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि आप यरूशलेम जाएं और मंदिर के स्थान पर पहुंचे तो आप वहां देखेंगे कि मंदिर तो वहां नहीं है परंतु वहां ओमर का मस्जिद है। अब यदि आप इस पद को यथोचित समझना चाहते हैं तो आपको यरूशलेम जाना होगा क्योंकि इस स्थान में उसी नगर में है। मुझे समझ में नहीं आता कि मनुष्य क्यों धर्मशास्त्र के किसी पद को संदर्भ से निकालकर अपने लिए उसे प्रासंगिक बनाना चाहता है। वह इससे उद्देश्य से तो वहां रखी नहीं गई है। यह प्रतिज्ञा मंदिर के समर्पण के समय इसराइल को दी गई थी। यद्यपि यह पद हमारे व्यवहार के लिए है, उचित तो यह होगा कि हम नए नियम से हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोजें। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 16 पद में आगे पढ़ते हैं, और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, यह स्थान बहुत ही मन भावन है और इसलिए जब आप इसे देखेंगे तो आपका मन उसमें लगा रहेगा। हम आगे देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इसराइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि दाऊद के वंश से वहां राजा ना हो। आज इस पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं है जो दाऊद के वंश से होने का दावा करे, परंतु एक है दाऊद के वंश से जो परमेश्वर के दाहिने और उपस्थित है। जी हाँ, उसे कहा गया है, भजन संहिता 110 के 1 पद में हम पढ़ते हैं, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 12 और 13 पद में भी हम इसे पढ़ते हैं। तब हम आगे देखेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। मेरे प्रियो, आज वह स्थान उपेक्षित है, वह अब एक पवित्र स्थल नहीं रहा, आज वहां ओमर का मस्जिद बना हुआ है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय के 21 पद में आगे लिखा है, और यह भवन जो इतना विशाल है उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश को और इस भवन से ऐसा क्यों किया है। ध्यान दीजिए, यह वही स्थान है जहां ओमर का मस्जिद बना हुआ है। किसी ने जो यरूशलेम गए हुए थे उन्होंने कहा इस पद को स्मरण करते हुए कि यहाँ पर परमेश्वर का भवन होना था, परंतु आज इसे देखें, ऐसा क्यों है। यहाँ भी उतना ही अन्य जातिवाद है जितना पृथ्वी पर और कहीं है। आपके विचार में यदि यह परमेश्वर का स्थान है तो ऐसा नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ठीक यही तो कहा था। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, तब लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है। मेरे प्रियो, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस व्यक्ति को मैं कह पाता कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि इसराइल के ईश्वर त्याग के कारण ऐसा ही होगा। मैं उसे दिखा पाया कि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 8 और 9 में देखेंगे सुलेमान की उपलब्धियां और प्रसिद्धि। अगले दो अध्याय सुलेमान के अनुभव और कामों तथा विदेशों में उसकी गवाही की चर्चा करते हैं। सुलेमान एक कर्मठ शासक था, वह दाऊद के उद्देश्यों, योजनाओं और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सफल हुआ। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे इतिहास के पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। ध्यान दीजिए, मंदिर निर्माण एक लंबी परियोजना थी, उसके निर्माण में सुलेमान का लगभग आधा राज्यकाल लग गया था। परमेश्वर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। तब हम आगे देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 8 अध्याय के 2 और 3 पद में, तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इसराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। सुलेमान के युग में मात्र यही एक युद्ध हुआ था और वह भी महत्व नहीं रखता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 8 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु इसराइलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया, वे तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जी हाँ, सुलेमान ने सेना और अगुवाई के पदों पर अपने लोगों को रखा और सब छोटे कामों के लिए कनानियों के वंशजों को नियुक्त किया। ये वहां के आदिवासी थे जो निकाले नहीं गए थे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 8 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे वे 250 थे। ध्यान दीजिए, सुलेमान के इस कार्य ने भविष्य के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। परमेश्वर ने देखा परंतु न तो उसे सराहा और न ही आशीष दी। दूसरे इतिहास की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 11 पद में लिखा है, फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा कि जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वे पवित्र हैं, इसलिए मेरी रानी इसराइल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। प्रिय मित्रों, फिरौन की पुत्री उसकी रानी थी, उसके लिए उसने दाऊद के नगर से दूर एक महल बनवाया था। यह निर्णय एक बुद्धिमानी का काम था। मैंने ध्यान दिया है कि आज इसराइल में यह माना जाता है कि सुलेमान द्वारा विभिन्न देशों की राजकुमारियों से विवाह करने का कारण राजनीति संबंधित था। आपका ससुर आपसे युद्ध नहीं करेगा, इस प्रकार देश में शांति स्थापित करने की यह सुलेमान की एक नीति थी। कोई विदेशी राजा उस देश से क्यों युद्ध करेगा जहां उसकी पुत्री रानी है। मैं नहीं जानता कि सुलेमान के बहुपत्नी विवाह का यही कारण था या नहीं, यह सच है या नहीं मुझे नहीं पता। मेरी समझ में यह आंशिक रूप से सही है, किसी भी परिस्थिति में यह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। मेरे प्रियो, अध्याय के शेष भाग मंदिर और उत्सव तथा सुलेमान द्वारा दाऊद की योजना के अनुसार पारी पारी याजकों और लेवियों की नियुक्ति का वर्णन करता है। अध्याय 9 में हम देखते हैं कि यह सुलेमान के संबंध में अंतिम अध्याय है। हमने देखा है कि सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि मंदिर निर्माण थी। अब सुलेमान के जीवन में परमेश्वर दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या देखता है कि लिखे। यह बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है कि सुलेमान वह काम करने में सफल हुआ जो परमेश्वर चाहता था कि इसराइल करे, वैश्विक गवाह बने। और यहां लिखा है कि वे कैसे गवाह बने। मेरे प्रियो, इसराइल की गवाही का जीवन आज कलीसिया द्वारा दी जाने वाली गवाही से भिन्न है। इसराइल अंतर्मुखी था जबकि कलीसिया बाह्य मुखी थी। इसराइल को यरूशलेम के मंदिर में जाना होता था और संसार को अपनी आराधना में आमंत्रित करके सम्मिलित करना होता था, जबकि कलीसिया को यरूशलेम से आरंभ करके पृथ्वी की छोर तक जाना है। दूसरे शब्दों में कलीसिया को संपूर्ण संसार में सुसमाचार सुनाना है, जबकि इसराइल को संपूर्ण संसार को आमंत्रित करना था कि वे आकर मंदिर में परमेश्वर के प्रकाशन के भागी बने। मेरे मित्रों, इसराइल के लिए आवश्यक था कि वह इस बहुदेववादी संसार में एक राष्ट्र रूप में सच्चे एवं जीवित परमेश्वर का गवाह हो। कलीसिया को आवश्यक है कि वह इस नास्तिक संसार में व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित अनंत उद्धारकर्ता के गवाह हो। इसराइल ने परमेश्वर प्रदत्त अपने उद्देश्य को एक सीमा तक पूरा किया है। इसका प्रमाण वे अन्य जाति थे जो मंदिर की आराधना में सहभागी होने द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करने यरूशलेम में आते थे। आज कलीसिया की सफलता का मापदंड हमारे द्वारा सुसमाचार सुनाने वाली जातियां एवं कुल हैं। मेरे मित्रों, हम सब जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमारी मानसिकता यह है कि इसराइल के प्रयासों का तिरस्कार करें और कलीसिया की सफलता को बढ़ावा दें। हम बार बार इसराइल की विफलता की सर्वत्र चर्चा सुनते हैं और दूरस्थ स्थानों में सुसमाचार की सफलता को बढ़ा चढ़ा कर सुनाया जाता है। मुझे स्मरण है कि विश्व युद्ध द्वितीय के बाद चीन में जागृति के विषय में सुना, फिर जर्मनी की जागृति की चर्चा सुनी। मैंने दोनों स्थानों से जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि कहीं भी कोई जागृति नहीं आई। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि हम जागृति का समाचार दूरस्थ स्थानों से ही प्राप्त करते हैं, निकटतम स्थानों से नहीं। सच तो यह है कि हम आज भयंकर ईश्वर त्याग में हैं, दिन अंधकार के होते जा रहे हैं। आज विश्वास योग्य कलीसियाएं एवं पास्टर भी हैं। वे आज के कठिन समय को समझते हैं जिसमें वे जी रहे हैं। यद्यपि ऐसे कुछ प्रचारक एवं शिक्षक हैं जिन्हें संस्थाओं के शरण प्राप्त है, वे आज की परिस्थितियों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हरे कांच का चश्मा पहने हो, परंतु वह जो संसार में काम कर रहा है जानता है कि हम ईश्वर त्याग के युग में हैं। दूसरी ओर इसराइल की बड़ी सफलता को हम प्रायः अंतर्ग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं। हम उनकी सफलता को उनकी अंतिम विफलता के द्वारा आंकते हैं, अर्थात बंधुआई में ले जाने वाले उनके ईश्वर त्याग के द्वारा। परंतु वह समय भी था जब उन्होंने परमेश्वर को निराश नहीं किया। यरूशलेम से सब जातियों में उनकी गवाही व्याप्त थी, जिसके कारण अन्य जातियां चुंबक की नाई यरूशलेम की ओर आकर्षित होती थी। मेरे मित्रों, सुलेमान का राज्य उनकी गवाही की पराकाष्ठा थी। उस युग में इसराइल राष्ट्र शिखर पर था। उसके बाद उनका पतन हुआ और ऐसा हुआ कि उनका नैतिक पतन भी हो गया। मेरे मित्रों, दाऊद और सुलेमान के राज्य में अन्य जातियों पर गवाही के धर्मशास्त्र में दो विशिष्ट उदाहरण है। निसंदेह अन्य उदाहरण भी हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है। सोर का राजा हिराम, जो दाऊद का मित्र था, परमेश्वर को जानने लगा। उसने मंदिर के लिए बहुतायत से दान दिया, मंदिर के लिए सामग्री एवं कुशल कारीगर भेजे। क्या आपको स्मरण है कि उसने सुलेमान को क्या लिखा था? दूसरे इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है। जी हां, हिराम यापेत का वंशज था। शीबा की रानी की कहानी से विदित होता है कि इसराइल की गवाही उस युग में या उस युग के संसार की छोर तक पहुंच गई थी। वह हाम की वंशज थी। इस अध्याय में उसी की कहानी हमें दी गई है। मेरे मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि नए नियम में जहां हमें आरंभिक कलीसिया और संसार में सुसमाचार प्रचार की चर्चा की गई है, वहां कुछ उदाहरण व्यक्त किए गए हैं। हाम के वंशज, कूशी, खोजे का वहां उल्लेख किया गया है। यापेत के वंशज कोर्नेलियुस का भी उल्लेख है। शेम के वंशज तार्शीस के शाउल के मन परिवर्तन की घटना भी वहां पर दी गई है। हम आगे देखते हैं, शीबा की रानी का आगमन। आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कृति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में सुलेमान ने उस पर अपने राज्य का भेद प्रकट किया। उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है। उसने यह भी बताया कि मंदिर ही उनके लिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उनसे वहां भेंट किया करेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय के 3 और 4 पद में, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। मेरे मित्रों, हम पहले राजा की पुस्तक 10 अध्याय के 24 पद में पढ़ते हैं, समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। यहां शीबा की रानी उन सबों में से एक है जो सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने आई थी। इससे आप देख सकते हैं कि इसराइल राष्ट्र संसार में गवाही देने में सफल हुआ था। जी हां, लिखा है कि वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, या उसके द्वारा दी गई होम बलि के लिए कहा गया है। यह होम बलि मसीह का प्रतीक है। पाप बलि के तुल्य संसार में किसी भी अन्य जाति के पास कुछ नहीं था। इसी को देख वह आश्चर्यचकित हो गई थी। यह मसीह की ओर संकेत करती बलि थी। दाऊद ने मसीह के बारे में इतना अधिक कहा और लिखा था कि मेरी समझ में सुलेमान ने शीबा की रानी को भावी पाप मोक्षक के विषय में न बताने की भूल की हो। मेरे प्रियो, दूसरे इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कृति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तू इस कृति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। मेरे मित्रों, शीबा की रानी ने कहा, जब मैंने सुना कि परमेश्वर ने क्या किया है मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुलेमान की महानता के बारे में सुनकर उसने विश्वास किया और एक लंबी कष्टदायक यात्रा करके स्वयं देखने के लिए आई। मेरा विश्वास करें, वह यात्रा लंबी और कष्टदायक थी। वह हवाई जहाज से नहीं जा सकती थी, उसे तो संभवतः गर्म जलते हुए रेगिस्तान में महीनों यात्रा करना पड़ा होगा। उसके आगमन का मुख्य उद्देश्य था सुलेमान की बुद्धि और ईश्वरीय उपासना को देखना, अतः वह हतप्रभ रह गई थी। वह विश्वास ही नहीं कर पाई जब स्वयं न देख लिया। जी हाँ, सुनिए कि उसने क्या कहा। दूसरे इतिहास की पुस्तक 9:7-8 पद में, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। मेरे प्रियो, अब यह रानी परमेश्वर का गुणगान करती है। हमारे प्रभु यीशु ने शीबा की रानी के विषय में कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 12:42 पद में, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। जी हाँ, दक्षिण पश्चिमी अरब और अफ्रीका में शीबा नामक स्थान है, क्योंकि यीशु ने कहा कि वह पृथ्वी के छोर से आई थी। मैं यह सोचता हूँ कि वह अफ्रीका से आई थी। उसके परिचारक गण प्राची सुख विलास एवं धनन्य को प्रकट करते हैं। ज्योतिषियों ने इससे बढ़कर प्रभाव नहीं डाला था। वह एक पूर्वी रानी के दिखावे और रीति रिवाज का प्रदर्शन के साथ आई थी। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान की होम बलि का उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। यह पुराने नियम में मसीह का परिपूर्ण एवं सिद्ध चित्रण है। इसराइल अन्य जातियों में गवाही देने में कितना अधिक सफल था। शीबा की रानी जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करने आई थी और वह करने पाई। आपको स्मरण होगा कि एक बार हमारे प्रभु ने कुएं पर एक स्त्री के साथ चर्चा करते हुए कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:21 पद में, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। यीशु के युग में वह समय आ गया था और वह समय इसलिए आया कि आज हम सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक ले जाएं। तथापि सुलेमान के युग में संसार सुसमाचार सुनने यरूशलेम को आता था। मेरे मित्रों, आइए हम आगे देखेंगे सुलेमान का वैभव। दूसरे इतिहास की पुस्तक 9:22-23 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यूं राजा सुलेमान धन और बुद्धि से पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। जी हाँ, सुलेमान अपने युग में संसार के लिए एक गवाही था। तब हम आगे देखते हैं दूसरा इतिहास 9:25 पद में, और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4,000 थान और 12,000 सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, यह सुलेमान के चरित्र की चूक है। मूसा की व्यवस्था में राजा को घोड़े और रानियां बढ़ाना मना था। सुलेमान दोनों ही वर्जित काम को किया। मगिदो में आज सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र सुलेमान के घुड़साल हैं। अन्य स्थानों में भी घुड़सालों के खंडहर हैं। उसने वास्तव में असंख्य घोड़े रखे थे। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 9:26-28 पद में हम पढ़ते हैं, और वह महानद से ले पलिस्तियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था, और राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य, पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया, और लोग मिस्र से और सब देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। मेरे मित्रों, सुलेमान इस संसार का एक महान शासक हुआ। तब हम आगे देखते हैं सुलेमान की मृत्यु। दूसरे इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसके 29 से 31 पद में हम पढ़ते हैं, आदि से अंत तक सुलेमान और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहिया की नबुवत की पुस्तक में और नाबाद के पुत्र यारोबाम के विषय इद्दो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर सुलेमान से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा किया। उसने सुलेमान द्वारा मांगी अलौकिक बुद्धि उसे दी। उसके साथ ही उसने उसे धन संपत्ता और प्रतिष्ठा भी प्रदान की। और इस रीति से हम देखते हैं कि इसराइलियों ने परमेश्वर की गवाही दी और लोग इसके द्वारा से परमेश्वर को जानने पाए। आज प्रश्न यह है कि हम परमेश्वर की गवाही किस रीति से दे रहे हैं। क्या लोग मेरे जीवन को देखकर, मेरी कलीसिया को देखकर या मेरे चाल चलन को देखकर प्रभु को जान रहे हैं? मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए यही एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मेरी गवाही लोगों के बीच में कैसी है। क्या लोग मुझे जानते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं उद्धार प्राप्त व्यक्ति हूँ, मैं कलीसिया का सदस्य हूँ? लोग आपको किस रीति से जानते हैं? मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप अपने जीवन में सुलेमान और इसराइलियों के जीवन के द्वारा से अपने जीवन की गवाही लोगों तक पहुँचाएंगे, सुसमाचार के वचन को पहुँचाएंगे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीषों को प्राप्त करें। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही को हो।